ओयाण नमोवच्छायाण नमो लोये सर्वसाम मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंद कुंदार्यो जय धर्मस्तु मंगलो सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासन नमः समय साराय स्वामी चिस्वभावाय भावाय सर्वभावाम्
इंद्री और इंद्रियों के विषय भूत पदार्थ उन तीनों को आचार्य अमृतचंद्र देव ने इंद्री शब्द से संबोधित किया था और तीर्थंकर परमात्मा की निश्चय स्तुति क्या है ये बताते हुए आचार्य देव ने कहा उन इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने आत्मा को अधिक अकाश भिन्न जानता है उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं और यह जितेंद्रिय जिन पना जो तीर्थंकर परमात्मा की पहले नंबर की स्तुति है इसमें ये ज्ञायक संकर दोष को दूर करके स्तुति की गई है। यानी क्या है अज्ञानी को ज्ञान और ज्ञेय एक ही प्रतिभाषित होते हैं तो ज्ञान और ज्ञेय भिन्न होने पर भी उनका एक रूप प्रतिभाषित होना उसको संकर दोष कहते हैं और उसका परिहार उस स्तुति में किया गया है। ये पहले नंबर की स्तुति है और सर्वप्रथम किसी भी मोक्ष मार्गी जीव को जो मोक्ष मार्ग में अपना कदम रखता है उस जीव को पहले नंबर में ये स्तुति प्रकट होती है। इसका नाम समय दर्शन अपन कह सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान से ये स्तुति का प्रारंभ होता है। जगन्य स्तुति है स्तुतियों के क्रम में जगन्य स्तुति है वर्णन के क्रम में पहले नंबर की स्तुति है क्योंकि ये जगन्य स्तुति होने पर भी जब तक ये स्तुति नहीं होती उसके आगे की स्तुति होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि जिसे जगन्य स्तुति भी प्रकट नहीं हुई उसे मध्यम अथवा उत्कृष्ट स्तुति प्रकट हो जाए ये संभव नहीं है। तो ये बात उसमें चल रही है बहुत मार्मिक बात है। कल अपनी द्रव्य इंद्री के बारे में चर्चा हुई थी और द्रव्य इंद्री के लिए शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने शरीर परिणाम को प्राप्त किए द्रव्य इंद्रिया बहिरंग में प्रकट रखी स्थूल जड़ प्रभावी ये इनके विशेषण दिए थे और इधर भगवान आत्मा के विशेषण दिए थे अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी निज भगवान आत्मा को निर्मल भेदाभ्यास की प्रवणता से अपने से सर्वथा भिन्न किया यह द्रव्य इंद्रियों का जीतना हुआ ये चर्चा कल हो गई थी। अब आज इसमें भावेंद्री का विषय आता है और भावेंद्री का विषय जब आया तब गुरुदेव ने बोला कि ये बात द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से भी थोड़ी सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है द्रव्य इंद्रियों को तो हम कदाचित जड़ स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं ये भी हो जाते हैं कि वे शरीर का अंग है और क्योंकि शरीर जड़ है शरीर के अंग भी जड़ हुए। ये बात अलग है, सामान्य जनों की बात तो छोड़ो, लेकिन जयपुर थाने पर तो चर्चा हुई थी। जयपुर थाने पर तो चर्चा में एक प्रश्न उठा था, और वो पहला प्रश्न ये उठा था, जीवित शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है। तो गुरुदेव ये बात बोलते थे ना प्रवचनों में, शरीर की क्रिया वो तो जड़ की क्रिया है, और जड़ की क्रिया से आत्मा को धर्म हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं है। तो पहला प्रश्न वहां पर उठाया हमने, जड़ ये जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है कि नहीं। अपनी ओर से पंडित फूलचंद जी साहब ने उत्तर दिया, पहले ये तो सिद्ध कर लो कि शरीर जड़ है, शरीर जीवित है। अरे शरीर तो मृतक कलेवर है, इसी समय सार परमागम की 96 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने इस शरीर को मृतक कलेवर कहा। मृतक कलेवर का मतलब क्या, इस शरीर में ज्ञान नहीं, इस शरीर में दर्शन नहीं, इस शरीर में सुख नहीं, और इस शरीर में दुख नहीं। वो तो जड़ है, मृतक कलेवर है। और आश्चर्य की बात तो ये, इस मृतक कलेवर में अमृत विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया माने शरीर को ही अपना मान करके बैठा है। और जिनवाणी ये कहती है, शरीर को अपना मानकर अगर हम करोड़ वर्ष मंदिर में बैठे रहे, करोड़ों वर्षों तक तपस्या, बाहर की तपस्या करें, धर्म के नाम पर कुछ भी करें, लेकिन शरीर में अगर हमारी अपने पने की मान्यता है, तो जीवन में रंच मात्र भी धर्म का उद्भव नहीं हो सकता, धर्म की प्रगटता नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर को अपना मानना इस विश्व का सबसे बड़ा पाप है। नाथुराज जी ने, दौलत राम जी ने कहा, पंडित दौलत राम जी ने, देह जीव को एक जिन्हें बैरागम तत्व मुधा है। और समय सार नाटक में जहां सप्त व्यसनों की चर्चा आई, द्रव्य सप्त व्यसन को तो अपन सब लोग परिचित हैं, लेकिन जहां भाव सप्त व्यसन की चर्चा पंडित जी साहब ने की, वहां पर उन्होंने क्या लिखा, मांस भक्षण व्यसन जिसे कहा, जेनी को जिसका स्वप्न भी नहीं आता है ना, मांस भक्षण का ऐसा है कि जेनी को तो स्वप्न में भी मांस भक्षण नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने वहां पे क्या कहा कि देह की मगनताई यह मांस भक्षी को, इस देह में जो तेरी मग्नता है, इस देह में जो तेरी एकता है, इस देह में जो तेरा एकत्व और ममत्व पाया जाता है, शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का तुझे अनुभव नहीं है, और तू अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता है। पंडित जी साहब ने लिखा यह मांस भक्षी को, ये भाव मांस भक्षण नाम का व्यसन है। और ये कब से चला आ रहा है, ये अनादि काल से ये मान्यता चली आ रही है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवा, जिस पर्याय में जाता है, जिस शरीर को प्राप्त करता है, वो शरीर को अपना मानता है। गुरुदेव श्री का इष्टोपदेश पर प्रवचन है, और इष्टोपदेश के प्रवचन में शरीर का इतना गजब का चित्रण गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में किया, तो अगर एक बार अपन उस प्रकरण पर गहराई से विचार करें, इस शरीर के प्रति एकत्व के मोह को हम तुरंत तज देंगे। उन्होंने कहा जो पदार्थ आज तुझे अस्पर्श लगते हैं, जिनके छू जाने पर अपने हाथ धोता है, हो सकता है तेरे शरीर के ये परमाणु पूर्व काल में इस शरीर के आकार रूप परिणमित होने से पहले उन मल मूत्रादि रूप वो परमाणु रहे, सर्प के जहर रूप वो परमाणु रहे हो, और बाद में वे परमाणु तेरे शरीर रूप परिणमन कर गए हैं ना। ऐसे ऐसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका चित्रण किया, और अपने को शरीर के प्रति उदासीनता की बात करी। तो भाई तू शरीर के प्रति उदासीन होकर के एकमात्र अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की ओर खींच जा। शरीर को अपना मानता रहेगा तो शरीर और इंद्रियों का संयोग तेरे से कभी छूटेगा नहीं, अर्थात तुझे कभी भी अशरीर की दशा की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात उसमें कही, उसका बहुत विस्तार है, जितना विस्तार अपन कर सकते हैं अपन कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद आज जो दूसरा विषय है कि भावेंद्री, तो भावेंद्री का स्वरूप क्या है। देखो तो जो शरीर के अंग विशेष हैं, स्पर्शन रसन ध्यान चक्षु और कर्म, ये तो जड़ है और इनमें न ज्ञान है और न इनसे ज्ञान है। तो बातें कही, इनमें ज्ञान नहीं क्योंकि ये जड़ है, और जो जड़ होता है वो ज्ञान का उत्पादक नहीं होता। अपने बहुत न्याय शास्त्र में इस विषय में बहुत चर्चा की गई है और ये एक बहुत स्पष्ट समझने में आवे ऐसी बात भी है कि जिसमें खुद में ज्ञान नहीं वह ज्ञान का कारण कैसे हो सकता है। पूजा में बोलते भी अपन आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, कैसे मान रहा परिचों कर जड़ से तन सर्जन करता है। अभी है क्या मेरा स्वभाव है ज्ञानमय, यह वेद ज्ञान पाहर छाया, हो कर निराश सब जगे परिसे, अब शीघ्र शरण में आया। क्या बोलते आलोक ज्ञान का कारण है, आलोक ज्ञान का कारण है, मतलब प्रकाश है तो ज्ञान होता है, प्रकाश ज्ञान का कारण है। तो उन्होंने कहा अगर प्रकाश ज्ञान का कारण है तो फिर अंधकार ज्ञान के नहीं होने का कारण होना चाहिए, उल्टा हो गया। प्रकाश का उल्टा क्या है अंधकार। तो अगर प्रकाश ज्ञान का कारण है तो अंधकार किसका कारण होना चाहिए, ज्ञान के नहीं होने का। और ज्ञान के नहीं होने का कारण यदि अंधकार हो, अंधकार में यह अंधकार है ऐसा ज्ञान के लिए होगी। एक पॉइंट, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, जिसमें से ज्ञान उपजता है पहले हम ये तो जांच कर लें उनमें खुद में ज्ञान है कि नहीं। जिसमें खुद में ज्ञान नहीं है उससे ज्ञान कैसे उपजता है। लेकिन आज तक मैंने यही माना प्रकाश से ज्ञान होता है, पुस्तक से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है ना, और अपने ज्ञान स्वभाव को भूल गया। यह मान रहा था अब तक प्रभु जो जड़ चेतन सर्जन करता है कि जड़ पदार्थ चैतन्य ज्ञान का उत्पादन करें, ऐसा पंचम मंत्र भी नहीं है। ये बात अपनी हुई थी। अभी आज भावेंद्री का विषय है और भावेंद्री का विषय इंद्रिय के द्रव्य इंद्रिय के विषय से सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय में जगत को ये बात भली भांति समझने आ जाती है कि वे ज्ञान नहीं है क्योंकि वो जड़ है। लेकिन भावेंद्रिय, तो भावेंद्रियों में जगत के सभी अज्ञानी जीवों को भावेंद्रियों में ज्ञान होने का भ्रम है। ज्ञान होने का भ्रम होने से जगत के जीव भावेंद्रिय भी मुझसे अत्यंत भिन्न है और भावेंद्रिय से भी मुझे अपने आत्मा का भेद ज्ञान करने योग्य है। ये बात समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि भावेंद्रिय तो ज्ञान ही, वो तो जान जाएंगे तो उससे भेद ज्ञान करने का कहां सवाल है। लेकिन जब हम भावेंद्रिय के स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं और जब ज्ञान के स्वरूप को देखते हैं कि ज्ञान का स्वरूप है जानना, किसको जानना, जगत में जो जो भी ज्ञेय है वे सब ज्ञान के विषय बनते हैं। इस ज्ञेय को जानना और इस ज्ञेय को नहीं जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान में कौन ज्ञेय बनेगा, ज्ञान में कौन जानने में आएगा? कि जो भी ज्ञेय है वो ज्ञान में जानने में आएगा, लेकिन द्रव्य भाव इंद्रिय में ये बात नहीं। भाव इंद्रिय में अपने अपने विषय को जानती है। स्पर्शन भाव इंद्रिय, स्पर्श के हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम इत्यादि को जानती है, लेकिन रसना इंद्रिय के विषय, ग्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय, जो रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है, उसको भावेंद्रिय नहीं जानती, स्पर्शन भावेंद्रिय नहीं जानती। इसी तरह जो रसन भावेंद्रिय है तो वो रस को जानेगी, लेकिन स्पर्शन के विषय को और बाकी के इंद्रियों के विषय को नहीं जानेगी। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ग्रहण करती का मतलब जानती है। क्या 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 कहा कि भिन्न भिन्न अपने विषयों को, स्पर्शन इंद्रिय का विषय अलग है, रसना इंद्रिय का विषय अलग है, ग्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय का विषय अलग अलग, सभी इंद्रियों का विषय अलग अलग है। कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप रंग, ग्राण इंद्रिय का विषय सुगंध दुर्गंध, रसना इंद्रिय का विषय स्वाद और स्पर्शन इंद्रिय का विषय हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम आदि, ये सबके अपने अपने विषय हैं। तो अपने अपने विषय विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, तो कोई भी पुद्गल स्कंद है, तो कोई भी पुद्गल स्कंद है तो उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण एक ही साथ है, अलग अलग एक ही साथ है। और ज्ञान का स्वभाव भी उन स्पर्श रस गंध वर्ण को एक साथ जानना, ऐसा तो नहीं कि ज्ञान स्पर्श को तो जानेगा लेकिन रस को नहीं जानेगा, रस को जानेगा लेकिन गंध को नहीं जानेगा, गंध को जानेगा लेकिन वर्ण को नहीं जानेगा। अरे जब ज्ञेय अखंड, ध्यान से सुनना, ज्ञेय अखंड, और उस अखंड ज्ञेय में अभी अपन पुद्गल की बात कर रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें अखंड रूप से पाए जाते हैं। और ज्ञान का, ज्ञान भी अखंड है, तो ज्ञान का स्वभाव भी उस ज्ञेय को संपूर्ण रूप से जानना है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है तो ज्ञान उसके स्पर्श रस गंध वर्ण को अक्रम से जानने का स्वभाव है, एक साथ जानने का स्वभाव है, उसमें डिविजन नहीं करता हुआ। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं जो जिनके माध्यम से ज्ञान का प्रवर्तन वर्तमान में हो रहा है, तो अखंड ज्ञान खंड खंड हो गया। स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने वाला ज्ञान, उस ज्ञान के ऐसे टुकड़े हो गए इंद्रियों के माध्यम से, स्पर्शन भावेंद्री का जो ज्ञान है, स्पर्शन भावेंद्री रूप जो इंद्री है, भावेंद्री है, तो वो मात्र स्पर्श को जानेगी, अन्य को नहीं जानेगी। ज्ञान का स्वभाव भी है, जब ज्ञेय में स्पर्श रस गंध वर्ण सब है तो ज्ञान किसे कहेंगे, जो सबको जाने। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय मात्र स्पर्श को जानती है, रसना इंद्रिय मात्र उसके स्वाद को जानेगी, ग्राण इंद्रिय मात्र उसकी सुगंध दुर्गंध को जानेगी, चक्षु इंद्रिय मात्र उसके कलर को जानेगी, और कर्ण इंद्रिय उसमें मान लीजिए आवाज हुई उस आवाज को जानेगी। ज्ञान का स्वभाव ऐसा ही, ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञेय को संपूर्ण रूप से जानता, एक बात। दूसरी बात कि ये जो भावेंद्री है ना, खंड खंड रूप अपने विषय को ग्रहण करती है, इनका विषय क्या? इनका विषय पौद्गलिक है। पौद्गलिक में भी स्कंद, स्कंद में भी पर्टिकुलर कुछ स्कंद, सब ज्ञान का विषय है। और अरुणी भगवान आत्मा को तो जो जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, भाव द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से तो जानता ही नहीं, लेकिन भाव इंद्रिय के माध्यम से भी आत्मा को नहीं जानता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि आत्मा अरूपी तत्व है और अरूपी तत्व खंड खंड रूप भाव इंद्रिय का विषय भी बनता। तो क्या उसको ज्ञान कहना सही है? जो जिसका ज्ञान हो उसी को नहीं जाने। आत्मा का ज्ञान है तो आत्मा का ज्ञान आत्मा को नहीं जाने, उस आप उसको ज्ञान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये विचार। जो ज्ञान जिसका है, अगर वो ज्ञान, अगर हम कहते हैं कि आप आई तो आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा का ही ज्ञान है, खंड खंड भाव इंद्रिय हुआ तो क्या हुआ, है तो आत्मा का ही ज्ञान। तो भाई साहब, आत्मा का ज्ञान उसे नहीं कहते जो आत्मा को ही नहीं जाने। अरे ज्ञान को उसे कहते हैं वो जिसका है उसकी प्रसिद्धि करे। तो अगर ये ज्ञान है तो इसे ज्ञानी स्वभावी भगवान आत्मा की इसमें प्रसिद्धि होना चाहिए, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में, भावेंद्रिय ज्ञान में इसकी प्रसिद्धि हो रही है? आत्मा की प्रसिद्धि हो रही है या मात्र पुद्गल की प्रसिद्धि हो रही है? भावेंद्रिय किसकी प्रसिद्धि करता है? भावेंद्रिय मात्र पुद्गल की प्रसिद्धि करता, आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता। तो अगर ये ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो तो उसे आत्मा प्रसिद्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। ज्ञान सर्वांग से जानता है, संपूर्ण को जानता है, सर्वांग से जानता है। ऐसा नहीं होता ना, ज्ञान की पर्याय तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में होती, और जानने का जो ज्ञान का व्यवसाय है, अतीन्द्रिय ज्ञान का जो व्यवसाय है, वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जानने का व्यवसाय होता है। इंद्रिय ज्ञान में वो चीज, इंद्रिय ज्ञान में तो क्या है, इंद्रिय ज्ञान तो देह के भी खंड करती है, और इंद्रिया वो देह का भी खंड करती है और ज्ञान को भी खंड रूप से अभिव्यक्त करती है। ये इसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को सच में ज्ञान कहती नहीं है, वो तो वास्तव में ज्ञेय के खाते में डाल दिया उसको। मतलब ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा से न्यारा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा की प्रसिद्धि में कारण भूत न हो, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान न हो, उस ज्ञान को हम ज्ञान कहते ही हैं। जो आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करे उस ज्ञान को हम ज्ञान कहते ही नहीं, है ना। ये यहाँ पे कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, जो अपने नाम यह है, देखो भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, क्या मतलब इसका, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, जबकि ज्ञान कैसा है, अखंड है, और अखंड ज्ञान के टुकड़े कर दिए, अखंड ज्ञान के टुकड़े कर दिए, ज्ञान अखंड। और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जब उसी ज्ञान का प्रवर्तन हुआ, उसी ज्ञान का प्रवर्तन होने से क्या हुआ, ज्ञान के टुकड़े हो, ज्ञान को खंड खंड रूप से कर दिया उसे, है ना। तो बतलाती है ऐसी भावेंद्रियों को, इनको बोलते हैं भावेंद्रिय, तो उनको क्या करना, कि प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्तिता के द्वारा। आत्मा कैसा है, अखंड एक चैतन्य शक्तिता। भगवान आत्मा तो अखंड है, एक है, चैतन्य शक्तिता के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना।
वो निर्मल वेदा व्याप्ति पेमेंट यहाँ भी लागू हो जाएगा। कैसे जाना कि सामने क्या है, इधर इधर मैं कैसा, तो मैं कैसा कहते कि प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति का वो मेरा स्वभाव, और उधर कौन सामने अपने अपने विषयों को खंड खंड भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों को विषयों के व्यापार रूप में जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करके आ गया ना, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है अर्थात ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। ये तो है भाव इंद्रिय का शब्द जिसने अखंड ज्ञान में खंड कर दिए, और इधर भगवान आत्मा, इधर भगवान आत्मा कैसा, इधर भगवान आत्मा अखंड और अखंड के साथ एक चैतन्य शक्तिता के द्वारा प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्तिता के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना नक्की हो गया। देखो दो बातें हुई, ये नक्की हो गया ये जो भावेंद्रिय है जो ज्ञान को खंड खंड रूप बताती है, जिसमें ज्ञेय के खंड कर दिए जाते हैं, जिसमें वास्तव में मतलब संपूर्ण को जानने का स्वभाव नहीं है, बात पूरी हो गई, ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं तो अखंड एक चैतन्य स्वरूप हूं। तो अखंड एक चैतन्य स्वरूप जहां ऐसा नक्की हुआ वो मेरे से भिन्न है ऐसा जाना। भावेंद्री का वर्षो यह भावेंद्री का जीतना हुआ, भावेंद्री का जीतना हुआ मैंने क्या, अभी तक हमें भावेंद्रियों में ज्ञान होने का भ्रम था। क्या था अभी तक, भावेंद्रियों में ज्ञान होने का भ्रम था, ये ज्ञान है, अभी वो भ्रम हमारा प्रसाई, अभी भावेंद्रियों का अभाव नहीं हो जाएगा। क्या दृष्टि हो कि समय दृष्टि हो कि मुनिराज हो, भावेंद्री का व्यापार तो चलेगा अभी, लेकिन जैसे होता है ना राज में एकत्र टूटने के बाद भी कुछ काल तक राज का व्यापार चलता है, राज का परिणमन चलता है, लेकिन राज के परिणमन का मूल कट गया। राज के परिणमन का मूल क्या था, राज में अपनापन, ये राज के उस परिणमन का मूल, अब वो उसमें अपनापन टूट गया, अब भले राग है लेकिन वो राग कैसा हो गया, वो राग पंगु हो गया, अब अनंत काल तक वो राग की धारा चलने वाली नहीं है। अरे अनंत काल की बात तो छोड़ो, अनंत समय भी साधक दशा के लिए, दो पांच दस भाव भी हो ना तो भी वो भाव एक निश्चित गणना में आ जाते, और जो गणना में आ जाने उसको फिर अनंत नहीं बोलते। तो साधक दशा का काल अखंड के समय होता है, अनंत काल नहीं होता। राग जिसे राग में एकत्र बुद्धि टूटी, तो एकत्र बुद्धि टूटने पर इधर राग में एकत्र बुद्धि टूटी, उधर अपने स्वभाव में एकत्र बुद्धि हुई, तो अभी राग रहता है लेकिन राग का मूल टूट गया, राग का राग के टिकने का आधार टूट गया, राग के टिकने का आधार टूट गया, तो राग कितने टाइम पे जिंदा रहेगा, जैसे वेंटिलेटर में किसी आदमी को डाल दे, तो किसको डालते हैं, अपन भी जानते हैं कि दो चार दिन जितने निकल जाए उसने ठीक है, उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, है ना। इसी तरह अज्ञानी ने राग को पोषण किया और ज्ञानी ने राग का एकत्र छोड़ दिया, इसका मतलब क्या, उसका जो राग दिखता है ना अपने को वो तो वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें लेता हुआ है। उसी तरह यहाँ पर समझो कि अभी क्या हुआ, अभी तक हम इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, इंद्रियों के माध्यम से खंड खंड रूप से प्रवर्तने वाले संपूर्ण को नहीं जानने वाले
अपने अपने विषयों के व्यापार में प्रवर्तने वाले इंद्रिय ज्ञान में हमें ज्ञान पते का भ्रम हो गया था और उसके द्वारा हम क्या कर दिया था हमने, मैं अखंड एक चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपने उस भगवान आत्मा को अपन भूल गए। जब अपन ने ये निर्णय किया तो अरे इंद्रिय ज्ञान जिसे बोलते हैं वो तो मेरे ज्ञान का स्वरूप ही नहीं, क्योंकि मेरा ज्ञान अखंड है, मेरे ज्ञान को मेरे ज्ञान में जानने में आने वाला ज्ञेय भी अखंड है, माने ज्ञेय के टुकड़े नहीं और ज्ञान के टुकड़े नहीं। और इंद्रिय ज्ञान अपने निश्चित प्रदेशों में प्रवर्तता है, और वास्तव में ज्ञान का सवाल क्या है, आत्मा के संपूर्ण भाग में से प्रवर्तना। इंद्रिय ज्ञान का कार्य क्या है, नेत्र इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, नेत्र भाव इंद्रिय है, तो नेत्र भाव इंद्रिय संबंधी ज्ञान कहाँ से प्रवर्तेगा, आप आंख के आगे आंख के साथ में जो प्रदेश है, आंख के हिस्से में जो प्रदेश है वहां से चक्षु भाव इंद्रिय प्रवर्तेगी, है ना, बाकी के शरीर में चक्षु भाव इंद्रिय का परिणाम आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह अपना 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 सबका समझ, ये जो व्यवस्था है कि ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ये तो ज्ञान के टुकड़े कर दिए उसने, और ज्ञान के जो टुकड़े किए, और ज्ञान के टुकड़े भी कैसे, ऐसे जो मात्र ज्ञेय के भी एक भाग को जाने और वो भी जैसे पुद्गल को जाने तो सारे पुद्गलों को नहीं जाने, परमाणु ज्ञान का विषय नहीं बनते, स्कंद का भी एक एक गुण विषय बनता है, एक गुण जिस इंद्री का विषय बनेगा दूसरी इंद्री का विषय वो नहीं बनेगा, उसके बाद सारे स्कंद ज्ञेय ज्ञान के विषय नहीं बनते, है ना। जितना इंद्री ज्ञान का विषय है, जितने पुद्गल स्कंद इंद्री ज्ञान के विषय खंड खंड रूप से भी बनते हैं, उससे अनंतानंद गुणे पुद्गल अभी विश्व में ऐसे हैं जो इस इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते, और ज्ञान का ऐसा स्वरूप है विश्व का कोई भी ज्ञेय हो वो ज्ञान का विषय बनता है। सच बात ये कि केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का जितना और जैसा विषय है, श्रुत ज्ञानी के श्रुत ज्ञान का भी वैसा और उतना ही विषय है। अंतर क्या है, अंतर प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, लेकिन विषय का अंतर नहीं। और इंद्रिय ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का विषय तो मात्र रूपी धर्म द्रव्य इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, अधर्म द्रव्य इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, आकाश इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, काल इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, जीव इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, उद्गल स्कंदों में भी कुछ स्कंद इंद्रिय ज्ञान का विषय बनते हैं जो इंद्रियों के सामने होते हैं। आगे इसके अलावा अनंत अनंत पुद्गल ऐसे है जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। अब बोलो इतना सा हिस्सा उसको हम ज्ञान कहेंगे नहीं कहेंगे, और अगर हम उसको ज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञान मानते हैं, तो क्या संपूर्ण ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का अनादर उसमें नहीं होता है। हमें इतने से हिस्से को, इंद्रिय ज्ञान संबंधी इतने से हिस्से को जिसका डिफेक्ट अभी बताया यहाँ पर, उसको हमने ज्ञान मान लिया, उसको हमने अपना स्वरूप मान लिया, तो सच में हमने अपने अभिप्राय में अपने भगवान आत्मा के पाया शब्द क्या आया, अपने ज्ञान प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति का, अपनी उस चैतन्य शक्ति का हमने अनादर किया। वो यहाँ पे कह रहे उसके द्वारा अपने से, उसके द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न किया, किसको सर्वथा अपने से भिन्न किया, भिन्न जाना भाव इंद्रिय, इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह द्रव्य इंद्रियां भगवान आत्मा से भिन्न है, परमार्थ से भाव इंद्रियां भी उसी प्रकार आत्मा से भिन्न। जैसा मैं अभी चर्चा कर रहा था, ऐसा निर्णय हो गया और अपना ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अपने दृष्टि ज्ञान और अनुभूति में आ गया, और अतीन्द्रिय ज्ञान की एक धारा प्रकट हो गई, जैसे ज्ञानी को राग का एकत्र टूटने पर एक ज्ञान धारा
निर्मलता की धारा प्रकट हो जाती है, भले राग साथ में रहता हो लेकिन सर्वथा राग नहीं रहता। इसी तरह ज्ञानी को जब इस तरह अपना भगवान आत्मा अनुभव में आता है ना, तो एक अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा चालू हो जाती है। भले ही अभी इंद्रिय ज्ञान का व्यापार रुका नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में जो ज्ञान होने का भ्रम था वो भ्रम टूट गया, और वो भ्रम टूटने पर अब लंबे काल तक जिस तरह राग लंबे काल तक ज्ञानी के साथ नहीं रहता, उसी तरह ये इंद्रिय ज्ञान का व्यापार भी अब लंबे काल तक इस आत्मा के साथ रहने वाला नहीं। अरे केवल ही भगवान को शरीर के चिन्ह विशेष इंद्रियां होती है, एक इंद्रिय ज्ञान का व्यापार नहीं। ठीक है, अनुभूति के काल में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में शरीर के चिन्ह विशेष इंद्रियां तो है, इंद्रिय ज्ञान का व्यापार नहीं। अगर इंद्रिय ज्ञान वास्तव में ज्ञान होता तो इंद्रिय ज्ञान का व्यापार बंद होने पर आत्मा के अभाव का प्रश्न। आगे ये दूसरे प्रकार का, अब इसके बाद आज अपन इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कल फिर अपन 32 और 33 जहाज अपनी रही है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। अब देखो ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अर्थात अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं, एक होते नहीं एक जैसे होते दिखाई देते हैं, ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषय रूप स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगतता के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना। अब इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना माने क्या? हाँ, मुझे तो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना है, मैं तो उठा उठा के इसको बाहर देखूं तो मैं नहीं उठा, अपने को वैराग्य आया हो, तो वैराग्य आया हो तो क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं, मुझे तुम सबसे वैराग्य हो गया, तुम सब निकलो घर से, मुझे तुम्हारा मुझे तुमसे वैराग्य हो गया, मुझे वैराग्य हुआ है ना, तुम चल घर से। और होता क्या, जिन ज्ञानी धर्मात्माओं को वैराग्य होता है वो घर का त्याग करते, घर तो वही पड़ा था, मतलब क्या है कि देखो इंद्रियों के भावेंद्रियों के माध्यम से जो पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं, भावेंद्रिय के विषय बनते हैं, तो बोलते ग्राह्य ग्राह्य ग्राहक लक्षण, ग्राह्य ग्राहक माने जानने वाला अथवा ग्रहण करने वाला, जानने योग्य अर्थात ग्रहण करने योग्य, ग्रहण का मतलब है जानना, ऐसा जिनका लक्षण है। तो भावेंद्रिय के माध्यम से जो पदार्थ जानने में आए, मैंने भावेंद्रिय का जो विषय बने, उन पदार्थों में जीव एकत्व कर लेता है, एकत्व करता है तो फिर क्या होता है? तो देखो लिया, देखो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत अच्छे शब्दों क्या कहा यहाँ पे, देखो ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, ऐसी निकटता है जैसे अपन देखो, जैसे अपन ने कोई भी मीठा पदार्थ मुंह में लिया और वो मीठा पदार्थ वास्तव में द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से भावेंद्रिय के प्रणवन में मीठा जानने में आया, वहां उसके पास एकत्र करने से जो जो भी पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जानने में आए, हम उन पदार्थों के साथ एकत्र करके बैठते, जबकि है क्या ग्राह्य ग्राहक संबंध की निकटता है, एक वस्तु बना नहीं। क्या मतलब, अभी लोक में अपन देखें, लोक में सारे पदार्थ, गुरुदेव के उदाहरण देते तो बहुत अच्छा, क्या उदाहरण देते थे, मान लीजिए एक जगह 100 लड़के थे, 100 के 100 लड़के नेत्र भाव इंद्रिय का विद्यमान, तो 100 के 100 लड़के वास्तव में क्या है, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ रूप गे है, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ रूप गे है। हम क्या गलती करते हैं उसमें, वो क्या करता है अज्ञानी जीव, उसमें वो ये करता है भैया ये मेरा, एक या दो लड़के उससे हो ये मेरे, तो तू ये लाया था। इसके अंदर एक बहुत गहरी बात वो कहना चाह रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम सारे विश्व के साथ जुड़कर सारे विश्व के साथ एकत्र कर बैठते हैं, और सारे विश्व के साथ एकत्र कर बैठते हैं जबकि भगवान आत्मा असंग है, अकेला है, और ये सारे पदार्थ संग रूप है, असंग रूप भगवान आत्मा को संग रूप इन भिन्न पदार्थों के द्वारा और पदार्थों से पदार्थों को निर्मल वेदाभ्यास के प्रमेय का द्वारा, ये बात उसमें आई थी, बहुत मार्मिक चर्चा है ये, तीसरे नंबर का पॉइंट, और इसके बाद अपन अगली यात्रा पर बढ़ेंगे। शेष चर्चा
अभी